कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा वृंदावन बिहारी, राधा वृंदावन बिहारी, राधा वृंदावन बिहारी, राधे राधे। जय राधा वृंदावन बिहारी। जय निताय गौरंग, जय निताय गौरंग, जय निताय गौरंग, जय गौर हरि। प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। जय प्रभुपाद।
श्री हरि नाम संकीर्तन की ही जय। ग्रंथराश्रीमद्भागवतम की जय। श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण। तो आज हम
चैतन्य चरितामृत अंत्यलीला अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 258 आज इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ये थोड़ा एक नाम उसमें मिसिंग है कृष्ण नाम देह तुमी मोरे कर धन्या। वो कृष्ण और नाम एक ही है इसलिए शायद से उन्होंने लिखा नहीं है तो नाम और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है इसलिए तो जो किया सही किया। कृष्ण नाम देह तुमी मोरे कर धन्या आमारे भाषाय यैछे एई प्रेम वन्या। कृष्ण नाम देह तुमी मोरे कर धन्या आमारे भाषाय यैछे एई प्रेम वन्या। कृष्ण नाम देह तुमी मोरे कर धन्या आमारे भाषाय यैछे एई प्रेम वन्या। कृष्ण नाम देह तुमी मोरे कर धन्या आमारे भाषाय यैछे एई प्रेम वन्या। कृष्ण नाम देह तुमी मोरे कर धन्या आमारे भाषाय यैछे एई प्रेम वन्या। कृष्ण नाम देह तुमी मोरे कर धन्या आमारे भाषाय यैछे एई प्रेम वन्या। माताजी कृष्ण नाम देह तुमी मोरे कर धन्या आमारे भाषाय यैछे एई प्रेम वन्या। कृष्ण नाम देह तुमी मोरे कर धन्या आमारे भाषाय यैछे एई प्रेम वन्या। तो ये श्लोक का अर्थ है, ये श्लोक का थोड़ा पार्श्वभूमि बताता हूँ तो जो इसके ऊपर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन संक्षेप में मैं बताता हूँ कि ये जो श्लोक है माया देवी कह रही हैं हरिदास ठाकुर जी को, कह रही हैं कि कृष्ण नाम देह तुम्हें मोरे कर धन्या। माया देवी जो सबको बंधन में डालती है वो हरिदास ठाकुर जी से कह रही हैं कि आप मुझे कृष्ण नाम देकर मुझे धन्य करो, मेरा जीवन सफल करो। हमारे भाषा ही अच्छे यही प्रेमा प्रेम वन्या। तो जिससे ये कृष्ण नाम लेकर क्या होगा, हमारे भाषा ही अच्छे प्रेमावृत वन्या। ये चैतन्य महाप्रभु की जो प्रेम की वन्या है, वन्या मतलब जो बाढ़ आती है बारिश के सीजन में, तो बाढ़ में मैं डूब जाऊं। लोग बाढ़ से बचना चाहते हैं और यहाँ पे माया देवी कह रहे मैं बाढ़ में डूब जाऊं, हमारे भाषा ही ये यही प्रेम वन्या। तो आज अभी अगला जो सप्ताह है उसमें भक्ति विनोद ठाकुर जी का तिरोभाव आविर्भाव और हरिदास ठाकुर जी का तिरोभाव है, तो पूरा सप्ताह हरिनाम सप्ताह है। लेकिन महाप्रभु तो कहते हैं कीर्तनिया सदा हरि, तो सारा जो साल ही हरिनाम कि हमारे जीवन ही पूरा हरिनाम जीवन होना चाहिए तो एक बार इन्होंने ये जो लिखा उससे मेरे को याद आया कि हाँ कृष्ण नाम नीचे लिखा है। तो एक बार जो चित्रकार थे प्रभुपाद जी के शिष्य, तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ऐसे कीर्तन कर रहे हैं ऐसा चित्र निकाला दोनों का, तो प्रभुपाद जी को पूछा और कि ये कैसा चित्र है, ठीक है क्या, सब बराबर है क्या। बरोबर जी, सोच के बोले सब बराबर है, केवल हरे कृष्ण महामंत्र आपने दोनों के नीचे लिखा है तो उसको ऊपर कर देना उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र उन्होंने गौरनिताई चित्र के नीचे लिखा था, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। तो बोले कि हाँ ये मंत्र जो है गौरनिताई के ऊपर लिख देना आप, ऐसा करके वही ये एक ही करेक्शन था उसमें। तो ये क्यों कहा उन्होंने, क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ने ये जो हाँ हरे कृष्ण का जो वन्य है उसमें हम डूब जाएं, हम नीचे हैं उसके तो इसलिए ऐसा उन्होंने सुझाव दे दिया उनको। तो आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ने जो ये प्रेमामृत वन्या लाई है हरिनाम संकीर्तन के रूप में, और जप और संकीर्तन हरिनाम नाम के रूप में, तो नाम का कुछ महिमा हम समझने का प्रयास करेंगे। तो उससे पहले कुछ हम आज देखेंगे, तो सबसे पहले श्री चैतन्य महाप्रभु सभी जीवों को कह रहे हैं कि ये आप श्लोक जो हैं वो कंठ में धारण कर लीजिए। कौन सा श्लोक है वो जो कंठ में धारण करना, प्रणादपि सुनीचे न तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीया सदा हरि, ऊर्ध्व बाहु करि कहो सुन सर्वलोक नाम सूत्र गांठी पर कंठे श्लोक। तो कह रहे हैं कि मैं हाथ दोनों हाथ ऊपर करके आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज ऐसा कृपया आप क्या करो, तो ये जो सूत्र है वो गले में आप बांध लो। कौन सा सूत्र है, तृणादि पी सुनी चेना, ये सूत्र आप गले में नामो सूत्रे गांठी पर कंठे श्लोक। तो इसका अर्थ ऐसा है कि हम कुछ आभरण पहनते हैं गले में, किस लिए पहनते हैं, ऑर्नामेंट क्यों पहनते हैं, वही तो सुंदर दिखने के लिए, किस किसको सुंदर दिखने के लिए, खुद तो देख नहीं पाते हमको जब अगर अगर हम आईने के सामने खड़े तो ठीक है, लेकिन ज्यादा करके हाँ दूसरों के लिए। यहाँ पे हम किसको संतुष्ट करना चाहते हैं, चैतन्य महाप्रभु को। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि ये अगर आप अलंकार पहनते हैं तो मैं आकर्षित हो जाऊंगा। तो कौन सा अलंकार है वो, तृणादपि सुनीचेना। हाँ तो हरिनाम जपने से पहले हमको ये याद रखना है कि सनातन गोस्वामी को श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि दिनेरे अधिक दया करें भगवान, पंडित कुलीन धनीर बड़ा अभिमान। वो जो पंडित कुलीन और धनी होते हैं हाँ उनको एक खतरा है, कितना 420 वोल्ट का खतरा है जो भी तो वो क्या खतरा क्या है कि उनको अभिमान आ सकता है कि अरे मैं कुलीन हूँ, मेरे पास धन है, या फिर मैं पंडित हूँ। तो कह रहे कि दिनेरे अधिक दया करे भगवान, लेकिन जो दीन है जो नम्र है उसके प्रति भगवान अधिक दया देते हैं, उसके प्रति अधिक भगवान कृपालु होते हैं। जैसे जैसे केशव कश्मीरी आए थे महापंडित, हाँ तो उनको क्या किया भगवान ने, पहले नम्र बना दिया फिर कृपा दे दिया। तो जिनको भी कृपा दिया पहले नम्र बना दिया भगवान ने। इंद्र जो आए थे ना उनको पहले क्या किया, नम्र बना दिया और पश्चात उनको कृपा दिया। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि तृणादपि सुनीचेना जो है, तो श्रील प्रभुपाद जब सबसे पहले अमेरिका गए थे तो इतने सारे भक्तों को उन्होंने प्रचार, इतने सारे विदेशियों को उन्होंने प्रचार करके भक्त बनाया। तो इधर वापस आने के बाद उनको उनके एक गुरु बंधु ने पूछा, अरे आप तो केमिस्ट है, दवाई बनाने वाले, तो आपके पास कौन सा फॉर्मूला है। तो बोले कि मेरे पास यही फॉर्मूला है, तृणादपि सुनीचेना तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीया सदा हरि। क्यों, ये हमारे आत्मा का मूल स्वभाव यही है कि हम नम्र विनयशील स्वभाव से हैं, लेकिन क्या हुआ कि कि उसके ऊपर क्या आया है, माया का पर्दा आ गया है और इसकी वजह से हम सोच रहे हैं कि ये पर्दा ही मैं हूँ। जैसे प्रभुपाद एक बार एक सरोवर के तीर पर अपने शिष्यों को लेकर घूम रहे थे और वो जाड़े का सीजन था, ऋतु था, तो वहाँ पे न्यून शून्य के भी नीचे टेम्परेचर था, शून्य से भी न्यून। तो क्या हुआ था, तो जो ये तालाब का जो सरोवर का जो ऊपरी भाग था वो बर्फ बर्फ जम गया था उसको। तो प्रभुपाद ने क्या किया, अपनी लकड़ी लेकर उसमें छेद कर दिया और नीचे पानी था। और प्रभुपाद ने ऐसे छड़ी ऊपर की और पूछा कि इससे आपको क्या पता चलता है। तो शिष्य कहे, इससे क्या पता चलता है, पता नहीं क्या। तो प्रभुपाद जी बोले हैं कि हमारे हृदय में भी कृष्ण का प्रेम पहले से ही उपस्थित है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबून है, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करय उदय। लेकिन क्या हुआ है, ये अज्ञान का, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर का पर्दा ऊपर जमा हुआ है जो बर्फ की तरह है, तो इसलिए हमको उपलब्ध नहीं है वो प्रेम अभी। लेकिन ये जो हरे कृष्ण महामंत्र किस तरह काम करता है, चेतो दर्पण मार्जनम, ये वो बर्फ को भेद कर अंदर का जो द्रवरूप प्रेम है उसके प्रति हमारा उपलब्धता बढ़ा देता है। जैसे कोई किसी का, मान लो बहुत पैसा आपका बैंक में है मान लो, हाँ, और लेकिन आप वो जो ऑनलाइन बैंकिंग का पासवर्ड भूल गए मान लो आप, तो क्या होगा, आपका पैसा तो है आपके अकाउंट में लेकिन आप वो उसका उपयोग कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। लेकिन क्या वो पैसा नष्ट हो गया, बैंक क्या ऐसा बोलेगी, अरे आप पासवर्ड भूल गए, आपका पैसा हमने किसी और को दे दिया। ऐसा नहीं होगा, हाँ। तो क्या तरीका है वापस आपका पासवर्ड पाने के लिए, आपको बैंक को वापस रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा, ओ सॉरी मैं भूल गया, हाँ मुझे वापस वो पासवर्ड दे दे। तो वैसे ही हम भगवान के सामने आते हैं तो हम बोलते हैं ओ सॉरी मैं भूल गया था कि मैं आपका दास था, दास हूँ करके, वो पासवर्ड, हाँ पासवर्ड है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हाँ। तो ये पासवर्ड अब अगर आप सेट करते हो तो लिखते हैं इसका वीक स्ट्रेंथ है, ऐसा कभी कभी लिखते हैं, हाँ आता है, हाँ। लेकिन ये जो है सबसे स्ट्रांग स्ट्रेंथ वाला पासवर्ड है, हरे कृष्ण महामंत्र। बोलते इति षोडशकम नामनम कली कलमश नाशनम नाथ परतरोपाय सर्व वेदेशु दृश्यते। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि सारे वेदों में हरे कृष्ण महामंत्र के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो ये महामंत्र इतना शक्तिशाली है कि हमारा जो ये पाप का जो राशि है उसको नष्ट कर सकता है। तो ये कथा पद्म पुराण में आती है कि जनक महाराज सीता देवी के पिता एक बार वो सोचते हैं कि मैं नरक में थोड़ा सा जाके आऊँ, उनको नरक जाने का जरूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी जैसे हमारे भक्त कभी कभी जेल में जाकर प्रचार करते हैं, आपने सुना रहेगा चंद्रमौली महाराज का एक पुस्तक भी है होली जेल करके, वो होली ग्रेल के ऊपर से होली जेल बना दिया। तो ऐसा होली जेल करके किताब है। वैसे जनक महाराज एक बार सोचते हैं कि मैं एक बार नरक में जाके आता हूँ। तो जो नरक में जैसे जा रहे हैं वहाँ पे देख रहे हैं कि सब लोग ऐसे अग्नि में तप्त हैं, अग्नि से जल रहे हैं। तो एक बार एक दूसरे एक पुराण में भी ऐसी कथा आती है, नचिकेत जब जाते हैं यमपुरी में तो देख रहे हैं कि सब लोग जल रहे हैं अग्नि में तो यमराज से पूछ रहे, अरे ये लोग ऐसे कैसे जल रहे हैं, आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हो, तो आपने क्यों ऐसा इस तरीके से बंदोबस्त प्रबंध किया है कि लोग यहाँ आके इस तरीके से जले। तो यमराज उनको बोलते हैं, नहीं नहीं ये सब लोग आने से पहले ये काफी ठंडा जगह था, ऐसा कहते हैं नचिकेत को। बोलते ये नरक जो था वो अच्छा खासा जगह था, ऐसा कुछ ऐसे हमने मैंने प्रबंध नहीं किया था जीवों को सताने के लिए। लेकिन ये क्या है, ये जो पापी लोग आते हैं मृत्यु लोग से तो उनका पाप ही अग्नि बन जाता है और उनको जलाता है, उन्होंने किया हुआ पाप ही अग्नि बन जाता है इधर आके और उनको जलाता है। मतलब मैंने कुछ ऐसा सिलेंडर नहीं मंगवाया है कि हाँ नया अग्नि जलाने के लिए उनको, हाँ ये लोग खुद अपना सिलेंडर लेके आए हैं। तो जिसका जितना सिलेंडर में गैस है उतना वो जलता है। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि हर व्यक्ति जो है अपने ही कर्म से अग्नि में, कर्म से अग्नि उत्पन्न होता है उसको जब वो नरक जाता है। तो जब जनक महाराज उधर हैं तो वो तो रहने के लिए नहीं आए थे, जस्ट देखने के लिए आए थे कि क्या है कैसा है। तो सब लोग बोल रहे हैं कि अरे आप मत जाओ यहाँ से, हाँ आप जब तक यहाँ पे हैं तो हमको एक शीतल वायु बह रही है इधर, ये अग्नि में हम खड़े हैं लेकिन फिर भी हमको क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि शीतल वायु हमारे शरीर को स्पर्श कर रही है, तो आप इधर से मत जाओ, आप हमारे के लिए एयर कंडीशनिंग जैसे हो। तो जनक महाराज फिर कहते हैं हाँ ठीक है मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से, हाँ अगर मेरा मेरे यहाँ रहने से आपको अगर सुविधा प्राप्त हो रही है तो मैं नहीं जाऊँगा। तो यमराज जी को कहते हैं यमराज जी इनका उद्धार क्यों नहीं कर रहे हो आप। तो यमराज जी कहते हैं अरे इन्होंने क्या क्या पाप किए आपको मालूम है क्या। तो अलग अलग पापों की लिस्ट देते हो उधर, वो लिस्ट पढ़ के हम डर जाएंगे। मतलब ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति जब अतिथि आया तो अतिथि का ठीक से सम्मान नहीं किया, इसलिए उसको नरक में यातना भुगतनी पड़ रही है। तो ये जो दूसरे व्यक्ति है ये हमेशा दूसरों में हाँ कुछ तो बुराई या ढूंढता रहता है, हाँ पूरा जीवन उसने दूसरों में बुराई या ढूंढने के लिए जन्म बिता है, इसलिए ये भी नरक में यातना भुगत रहा है। ये जो व्यक्ति है इसने अवैध स्त्री संग किया है इसलिए वो अभी अग्नि में तड़पेगा। उसका अगला जन्म क्या होगा मालूम है, तो इसका अगला जन्म सुअर का होगा और उसके आगे ऐसा अगला जो मनुष्य जन्म होगा उसमें वो क्या बोलते हैं उसको जो हिजड़ा बनेगा, तृतीय पुरुष ही बनेगा। तो ये उसका ये है क्या है प्रायश्चित है। तो जनक महाराज के हृदय में अनुकंपा उत्पन्न होती है। तो कह रहे हैं कि नहीं 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 ऐसा नहीं होना चाहिए, इतने सब जो मुझे सहन नहीं हो रहा है ये कि ये लोग इतनी यातना भुगत रहे हैं, तो इसका कुछ उद्धार का उपाय होगा। तो यमराज कहते हैं कि हाँ उपाय है, आपने आपका एक हमेशा एक प्रबंध रहता था कि आप जब नियम रहता था कि आप सुबह उठते ही राम का स्मरण करते थे, हाँ उठते ही बोलते थे राम 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 ऐसा बोलते थे, हाँ तो आप एक बार जब ही भगवान का एक दिन उठ के जब राम का नाम लिए थे तो नाम का पुण्य इनको प्रदान कर दीजिए। तो जनक महाराज बोलते हैं ठीक है मैंने जो नामोच्चारण किया है मेरे पूरे जीवन भर राम नाम का, तो उनका मैं पुण्य इनको प्रदान करता हूँ। जैसे ही वो ऐसा कहते हैं तो सभी वो जो नरकवासी हैं उनको दिव्य देह प्राप्त होता है उसी समय। और वो जनक महाराज से कहते हैं कि अरे आपने हमारे लिए जो किया हरिनाम संकीर्तन करके, बहुत बार लोग बोलते हैं अरे आप तो हरिनाम संकीर्तन करते हैं उससे दुनिया का क्या होने वाला है, हाँ और कुछ करो, हाँ ये बहुत अभी इस्कॉन में तो बहुत कुछ होता है, अभी प्रसाद वितरण भी होता है, हाँ लेकिन प्रमुख काम क्या है हरे कृष्ण संगठना का, हरे कृष्ण नाम का प्रचार, जिससे अभी अनेक प्रकार से लोगों की सहायता हो सकती है। तो हर एक नरकवासी दिव्य देह लेकर उनको वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। जय श्री हरि नाम संकीर्तन की। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे हरि नाम जो है वो हमारे जो अज्ञान का पाप का जो पर्दा है वो हटा देता है और हमारा जो असली स्वरूप है वो धीरे धीरे हमको समझ में आता है धीरे धीरे। जैसे प्रभुपाद जी को एक बार किसी ने पूछा आपने भगवान को देखा है क्या, प्रभुपाद ने कहा हाँ देखा है, तो क्या आप मुझे भगवान को दिखा सकते हो क्या, प्रभुपाद ने कहा हाँ दिखा सकता हूँ, तो बोला हाँ तो फिर दिखाओ। प्रभुपाद अपने शिष्यों की तरफ उन्होंने उंगली इशारा किया और कहा पहले आपको इनके जैसा बनना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान को देखने के लिए ये जो पद्धति बताई है, हाँ हरे कृष्ण नाम का संकीर्तन, भागवत श्रवण, हाँ श्रीमूर्ति सेवा, धाम वास और साधु संग, इसके बिना भगवान को देखने की पात्रता हमें नहीं है। तो हरिनाम के बारे में कुछ एक तीन चार आपको मैं किससे बताता हूँ। तो एक बार ये मैंने काफ़ी बार बता चुका हूँ, लेकिन ये मेरा काफ़ी प्रिय किस्सा है, इसलिए मैं बताता हूँ। एक बार निरंजन महाराज बता रहे थे कि यूक्रेन में उनका हरिनाम संकीर्तन, बाग में, एक बड़े बाग में उनको हरिनाम संकीर्तन करना था। तो यहाँ पे कैसे, आपको अगर हरिनाम संकीर्तन में जाते हो तो किसी का परमिशन लगता है क्या कि अरे हम हरि संकीर्तन कर रहे हैं? हाँ, स्पीकर अगर आप वापर कर रहे हो, उपयोग कर रहे हो, तो शायद से परमिशन लगता है शहरों में, लेकिन वो तुरंत मिल जाता है, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन विदेशों में बहुत सारे जगह पे ऐसा पहले परमिशन लेना पड़ता है, हाँ, 6-6 महीने पहले परमिशन लेना पड़ता है कि आज ये दिन हम संकीर्तन करेंगे। तब वो अनेक ऑफिस में जाकर, अलग अलग कार्यालयीन श्रेणियों में जाकर उस पर साइन होता है और बाद में परमिशन मिलता है। तो इस प्रकार उनको परमिशन मिल गया कि ये दिन संकीर्तन करेंगे। लेकिन वो दिन इतना जाड़ा था, इतना सर्दी था कि सब लोग 3-3, 4-4 स्वेटर पहने हुए थे। तो सब भक्त लोग बोले कि अरे आज नहीं जाएंगे हम बाग में संकीर्तन करने के लिए, हाँ कौन आएगा आज बाग में उधर, हाँ इतना ठंड है कि हम, हाँ हमारा हाथ, हाँ हम क्या बोलते हैं, इतना सारा हम साधन उपयोग करके खुद को उष्णता निर्माण करने की निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं, तो कैसे ये संभव है? तो निरंजन महाराज ने कहा नहीं नहीं बहुत मुश्किल से परमिशन मिलता है, वापस परमिशन कब मिलेगा हमको मालूम नहीं, सब लोग चलो करेंगे हम संकीर्तन। तो बोले ठीक है, अभी महाराज कह रहे हैं तो हम चलते हैं। तो सब लोग संकीर्तन में भाग लिए, 10-15 भक्त थे, हाँ तो सब लोग इतने कड़ी ठंड में, हाँ एक बड़े पार्क में जाकर, बाग में जाकर संकीर्तन करने गए, कोई नहीं था उधर, पंच भी नहीं था, हाँ फिर भी ये संकीर्तन कर रहे हैं क्योंकि महाराज ने कहा है इसलिए। तो संकीर्तन कर रहे हैं 1-1.5 घंटा, जैसे चालू किया उन्होंने, उनको खुद को ही आनंद आने लगा, तो और जोर से संकीर्तन कर रहे हैं। और उसके 1-1.5 घंटा संकीर्तन करने के बाद एक व्यक्ति अचानक आता है कहीं से तो, और कहता है कि अरे आप क्या जप रहे हैं, क्या मैं भी आपके साथ जप सकता हूँ? तो और वो व्यक्ति भी शामिल हो गया उनमें हरिनाम संकीर्तन करने में, और फिर सब भक्तों के साथ वापस मंदिर भी आ गया और कहा कि मैं आपके साथ रह सकता हूँ क्या? तो रोज वो घर से मंदिर आता था, भक्तों के साथ रहता था। तो एक हफ्ता ऐसे हो गया, रेगुलर आने लगा वो, जब भी करने लगा। फिर एक हफ्ते बाद उसने बताया कि आपको मालूम है कि आपका जो उस दिन का संकीर्तन है, हाँ वो कितना महत्वपूर्ण था मेरे जीवन में। तो भक्त बोले नहीं, तो बोले चलो मेरे साथ। फिर वो सबको वापस वही बाग में लेके गया और कहा कि एक हफ्ते पहले मैं जीवन से इतना परेशान था, इतना परेशान था कि मैंने सोचा कि मैं अभी खुदकुशी कर लूँगा, आत्महत्या कर लूँगा। तो मैं घर से एक रस्सी लेकर आया था, ये पेड़ पर टांग के मैंने उसका फांस बना दिया, और वो फांस मैंने वो डाली पर चढ़ के मैं फांस अपने गले में डाल दिया, और फिर मैंने बोला भगवान आपके पास ये लास्ट चांस है, अगर मुझे बचाना है तो मुझे एक सुखी व्यक्ति दिखाओ। और जैसे ही मैंने ये बोला तो मुझे ये धुन सुने दी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बोला अरे हाँ, इतने ठंडी में कौन आके गा रहा है, मतलब ये जरूर सुखी रहेगा। इतने ठंड में जानवर भी बाहर नहीं निकल रहे हैं, ये व्यक्ति लोग आके क्या कर रहे हैं, बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, बजा रहे हैं। तो आके देखा तो एक व्यक्ति नहीं, 15 व्यक्ति थे। तो बोले अरे भगवान, मैंने एक व्यक्ति दिखाने को बोला, आपने 15 व्यक्ति दिखा दिए, सुखी व्यक्ति। तो बोले कि ठीक है, हमारा खुदकुशी करने का प्लान कैंसिल। तो फिर मैं आपके साथ आ गया, फिर ऐसा करके उन्होंने बताया कि जो हम हरिनाम कीर्तन कर रहे हैं, हमको भी मालूम नहीं कि कितने लोग उससे प्रभावित हो रहे, कितने लोगों का जीवन एक बदलाव आ रहा है उससे वजह से। तो ये हरिनाम जो है, हम सोचेंगे अरे ये सब लोग हरिनाम को प्रशंसा कर पाएंगे क्या, सब लोग को अच्छा लगेगा क्या। तो कह रहे कि ये हरिनाम संकीर्तन जो है, ये नंद कुमार प्रभु जो प्रभुपाद जी के ये थे, सेक्रेटरी थे, तो वो बताते हैं कि एक बार बोलते हैं ये हरिनाम संकीर्तन इतना प्रभावी है कि किसी भी देश का, किसी भी जात का, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, ये हरिनाम से प्रभावित हो सकता है। इसका तो हमको भी अनुभव है। हम एक बार गुरुकुल के साथ हम वृंदावन यात्रा के लिए जा रहे थे, तो हम सब गुरुकुल मिला के सब हम कीर्तन कर रहे थे। हाँ, पहले कथा हुआ, फिर कीर्तन हुआ। कीर्तन में एक व्यक्ति आके बैठ गया जो हाँ आधा पौना घंटा हमारे साथ कीर्तन कर रहा था। तो बाद में हमने पूछा आपका नाम क्या है, तो हमको पता चला कि वो मुस्लिम था लेकिन वो पूरा आधा पौना घंटा कीर्तन में था। और फिर हाँ बाद में हमको कहता है कि हाँ आप जब वापस कीर्तन करोगे ना, मैं बाजू में, बाजू के बोगी में ही बैठा हूँ, आप जब वापस, ये जो आप गा रहे हो वापस कीर्तन करोगे तो मुझे बुला लेना। बोलते कथा कर रहे हो तब तो बुलाने का जरूरत नहीं है, लेकिन कीर्तन के लिए बुला लेना बोलता है ऐसा करके कहता है। हाँ, तो ये हरिनाम संकीर्तन कोई भी उसको उससे प्रभावित हो सकता है। तो नंद कुमार प्रभु बता रहे हैं कि एक बार बहुत सारे विदेश के भक्त, हाँ वो बेल्जियम से मुंबई आना चाहते थे, तो सबसे खटारा से खटारा फ्लाइट उन्होंने हायर कर लिया। प्राइवेट। तो जो उनका जो विमान था, तो कह रहे हैं कि कॉकपिट और जो जहाँ पे लोग बैठते हैं उसके बीच में पर्दा था, पर्दा ऐसा कुछ पार्टीशन नहीं था, सब ऐसा घर जैसा था मतलब तो बाद में बेल्जियम से वो उड़े और विमान को वापस ईंधन डालने के लिए उनको कैरो में उतरना पड़ा। बीच में कैरो आता है और वहां से वो मुंबई आएंगे। तो कैरो में जब उतरे, उनको पता नहीं था कि उधर बहुत बड़ा दंगा चल रहा था कैरो में, उनके ही दो पार्टियों में। तो लोग एक दूसरे की जान ले रहे थे, हत्याकांड हो रहा था। हाँ, तो सब जगह पे हाई अलर्ट लगाया था, सब जगह पे सोल्जर जो सैनिक हैं शस्त्र लेके घूम रहे थे। और उस समय हमारे भक्त तो उतरे कैरो में, एयरपोर्ट में उतरे, बाहर निकले और जोर जोर से संकीर्तन करने लगे। तो एक जो मिलिट्री का उनका जो व्यक्ति था, एकदम बहुत ही गंभीर था, और उसके साथ दो हट्टे कट्टे सोल्जर थे पूरे मिलिट्री यूनिफॉर्म में और भरी हुई मशीन गन लेके, हाँ उनको लेकर आ गया और भक्तों को कहा, उनमें गिरिराज महाराज भी थे, कि कैरो में आपका स्वागत है और आप जो कर रहे हैं बंद करो ऐसा करके कह के डरा के चला गया। वो दोनों जो सोल्जर थे उनके साथ, सैनिक थे, उनको बोले इनके ऊपर निगरानी रखो, ऐसा करके वो बोल के चला गया। तो ये जो दो हट्टे कट्टे ये थे, वो देख रहे थे भक्तों को, क्योंकि एक तो ऐसा देश है, ऊपर से ये नए धोती कुर्ता में कभी देखा नहीं, और ऊपर से हरे कृष्ण जप रहे हैं, तो उनके ऊपर निगरानी रखने के लिए उनको रख दिया। तो बाद में उनको बस में बिठा दिया एक, कि आप ये बस में वेट करो, आपका ईंधन भरेगा तो यहाँ से जल्दी रवाना हो जाना, ज़्यादा देर यहाँ पे रुकने का ज़रूरत नहीं तो बस में वो बैठे थे और गिरिराज महाराज, उनके पास एक बॉक्स था, वो जो बॉक्स अगर ओपन करते हो तो एक उसमें प्रभुपाद, परंपरा, गौर निताय, राधा कृष्ण, उनका जो क्या ऑल्टर बोलते हैं क्या, वो ऐसा छोटा वो खुलता था। तो उन्होंने ऐसा खोला गिरिराज महाराज ने, और माला निकाल के जप करने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नंद कुमार प्रभु थोड़े डर गए, बोले अरे अभी तो हमको वो धमकी दे के गया कि ये जप करना बंद कर दो, और ये हमारे गिरिराज महाराज तो जप कर रहे हैं, तो क्या होगा पता नहीं। हाँ, तो बोले थोड़ा मैं अस्वस्थ हो गया थोड़ा, और थोड़े सोचा मैं थोड़ा घूम के आता हूँ, एक राउंड मार के आता हूँ। तो नंद कुमार प्रभु राउंड मार के आए, वापस आने आके उन्होंने देखा तो जो दो, हाँ जो दो बड़ी मशीन गन थी, वो ऐसा बस की जो दीवार होती है उसको ऐसी लगी हुई थी, और वो जो दो सोल्जर्स हैं वो गिरिराज महाराज के कंधे में कंधे डाल के नाच रहे थे और गा रहे थे और बोल रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। तो गिरिराज महाराज उनको भी नचा दिए, हरे हरे नाम संकीर्तन में। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कोई सा भी सिचुएशन, कोई भी परिस्थिति है, कोई भी देश का कोई भी व्यक्ति है, तो वो भी हरे नाम संकीर्तन से प्रभावित हो सकता है। प्रभुपद बोलते थे कि मेरे पास बस यही एक है चीज है, कोई भी उपाय कोई मांगने आते थे कि मेरा मन शांत नहीं है, मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं है, तो प्रभुपद बोलते हैं कि ठीक है फिर आप जोर से हरे नाम लोगे थे फिर मन आपको परेशान कर रहा है। तो तो एक मैं इधर बस एक लीला की हम चर्चा करेंगे जो ये श्लोक कह रहा है, और उसके पश्चात हम कथा को विराम देंगे। हाँ, उससे पहले मैं भी एक हमारा खुद का अनुभव, हाँ, गौरचरण प्रभु के पास अनेक अनुभव रहेंगे क्योंकि हरे नाम संकीर्तन के लिए जाते रहते हैं नगर में। तो मैं एक जगह पे गया था वाड़ा में, वहाँ पे मुझे एक जन ने कीर्तन करने के लिए बुलाया था एक के घर पे। किसी का मृत्यु हो गया था और उसके 10 दिन पश्चात मुझे बुलाया था कि कीर्तन करने के लिए, तो मैं गया। तो वो क्या है, वो बहुत ही दरिद्र कुटुंब है, ज़्यादा पैसा नहीं है उनके पास। जो दो भाई हैं और उनकी माता है जो रहती हैं उधर, जो तो भाई है वो अच्छा आर्टिस्ट है, गणपति की मूर्तियाँ बनाता है। तो लेकिन क्या है, पैसा ना होने के कारण दोनों भाई अविवाहित हैं और उनकी माता भी बूढ़ी है। तो मैं गया तो एकदम वातावरण थोड़ा एकदम सुंदर सुंदर सा आपको लगता है, एकदम तुरंत पता चलता है। तो फिर मैं कीर्तन करना चालू कर दिया, लेकिन वो माता जो थी अंदर के कमरे में बैठी थी क्योंकि उसको बुखार था, 102-103 कुछ। तो जैसे मैंने कीर्तन चालू किया, वो ऐसे ऐसे चल के चल के आ गई, वही कमरे में बैठ गई। तो उसके बेटे उसको बोल रहे हैं, अरे माँ तुम अंदर जाओ, क्योंकि वो भी बीमार थी। तो उसको एक्चुअली में मुझे पता चल रहा था कि वो चल भी नहीं पा रही थी, चलते चलते ऐसे गिर जाएगी, ऐसे मेरे को डर लग रहा था। तो बोले नहीं 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 मैं बैठ के कीर्तन सुनती हूँ, ऐसा करके वो बैठ गए। फिर हमने कीर्तन किया, आधा घंटा हमने कीर्तन किया, और फिर तीनों ने मतलब और हमने काफ़ी मतलब देर तक कीर्तन किया। और बाद में ये जो दो भाई हैं वो हमको कहते हैं कि लास्ट 10 दिन से हमारे घर पे इतना मतलब हम डिप्रेशन में, क्या बोलते हैं डिप्रेशन को, हाँ तनाव, इतने तनाव और इतने निराशा में है कि हमको सूझ ही नहीं रहा था कि क्या क्या करना है, आगे क्या करना है। ऐसा बोलते हरिनाम संकीर्तन करने की वजह से ऐसा लगा कि हमारे जीवन में कुछ चैतन्य आ गया, ऐसा करके हमारे घर में कुछ चैतन्य आ गया, ऐसा करके कह रहे हैं। तो हम देखते हैं कि कैसे ये हरिनाम, एक बार केशवानंद प्रभु हमको बता रहे थे कि एक रूम में वो जप कर रहे थे, वो नम्रता से हमारे साथ शेयर किए एक बार। तो एक व्यक्ति आके काफी देर से उनको सुन रहा था और उनको आके बोला कि एक घंटे से मैं आपको सुन रहा हूँ। बोले आपका जो हरिनाम संकीर्तन का क्या वाइब्रेशन है जब हरे कृष्ण जप रहे हैं। तो बाद में केशवानंद प्रभु मुझे बताते हैं, कह रहे एक एक घंटे से तो मुझे तो पता नहीं चला वाइब्रेशन, उसको कैसे पता चलेगा। तो शायद से कभी कभी क्या होता है कि जो जिस जगह जहाँ पे उगता है वहाँ पे वो बिकता नहीं है, ऐसा कभी कभी हम हाँ बोलते हैं कि हम काफ़ी उसके साथ इतने वाकिफ हैं। हाँ, मलय भिल्ल पुरंदरी, हाँ चंदनम ओडिसर चंदन तरु काष्टम ईंधनम गुरुते, हाँ मलय पर्वत पे जो भिल्ल स्त्री है वो क्या करती है, वो चूल्हे के लिए चंदन का लकड़ी यूज करती है। क्यों? क्योंकि वो चंदन का स्मेल उसको इतनी बार आ चुका है कि अभी उसको लगता नहीं कि कुछ नया आया है करके। हाँ कि तो वैसे ही हमारे साथ हो सकता है कि अरे हरिनाम इतना ले रहे हैं कि हम भूल ही गए कि हरिनाम का प्रभाव क्या है। तो एक कथा हम सुनेंगे। तो हरिदास ठाकुर एक गुफा में बैठकर 300,000 माला कर रहे हैं। एक दिन हरिदास गुफा ते वसिया, नाम संकीर्तन करेन उच्च करिया। तो पौर्णिमा की रात्र थी, ज्योत्सनावनी वती रात्रि दश दिक सुनिर्मल। तो मतलब एटमोस्फियर पूरा रोमांटिक था ऐसा कह रहे मतलब पूर्ण सारे इंद्रियों को ये करने वाला, उत्तेजना देने वाला वातावरण था। उस समय क्या हुआ, बोले हे न काले एक नारी अंगने आईला, तार अंग कांत्य स्थान पीतवर्ण हैला। एक दिव्य स्त्री उधर आ गई जिसके केवल अंग कांति से पूरी दिशाएं पीतवर्ण की हो गई, सुनहरे वर्ण की हो गई। बाद में पता चलेगा वो कौन नारी जब परिचय देगी। तो कह रहे तार अंग गंधे दश दिका आमोदित, उसके केवल अंग का सुगंध से पूरे दश दिशा में फैल गया था। और भूषण ध्वनि थे कर्ण हय चमकित, और ऐसे नूपुर पहने हुए थे कि एक जब पद ले रही थी छुम 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 तो पूरे दुनिया का कान आकर्षित हो रहा था उसकी तरफ। तो वो उसने आकर तुलसी देवी को प्रणाम कर दिया और गुफा के द्वार पर वो खड़ी रही और हरिदास को प्रणाम करके एक मधुर वचन कहने लगी। जगतेर बंधु तुम्हें रूप गुणवान, तव संग लागी मोर एथा के प्रयाण, मोरे अंगीकार कर हैया सदय, दीने दया करे ए साधु स्वभाव है। बोलते हैं कि आप कृपया मेरा अंगीकार कीजिए, आपका संग लेने के लिए मैं इधर आई हूं, ऐसा कह के कह रही है। तो कह रहे हैं और ऐसा कह के अनेक प्रकार के नाना भाव प्रकाशित किए उसने, जिससे एक मुनि का भी धैर्य का नाश हो सकता है। लेकिन निर्विकार हरिदास गंभीर आशय, बलिते लागिला तारे हया सदय। लेकिन हरिदास ठाकुर ने क्या किया कि मेरा संख्या नाम संकीर्तन करने का महायज्ञ है, तो जब तक मैं कीर्तन नहीं पूरा होता मैं और कुछ सोच नहीं सकता, तो आप कृपया इधर बैठिए और मैं जो जप रहा हूँ वो आप भी सुनिए, थोड़ा सा आप इधर गुफा में आप बैठ जाइए और मेरा समाप्ति होने के बाद आपका इच्छा मैं पूर्ण कर दूंगा। तो ऐसा उसने कहा और कीर्तन करते करते प्रातःकाल हो गया तो वो नारी उठ के चली गई। ऐसे तीन दिन लगातार वो आई और इस प्रकार से उसके भाव दिखाना चालू किया जिससे ब्रह्मा जी का भी मन हरण हो सकता है। लेकिन ये श्लोक हम कहेंगे, कृष्णे नाम अविष्टमना सदा हरिदास, कृष्णे नाम अविष्टमना सदा हरिदास, अरण्य रोदित हैल स्त्री भाव प्रकाश, अरण्य रोदित हैल स्त्री भाव प्रकाश। कृष्ण के नाम में कृष्ण हरे कृष्ण जपने में इतने आविष्ट मन हो गए थे हरिदास, सदा हरिदास, कि वो जो स्त्री नारी जो अलग अलग भाव दिखा रही थी उससे उनका मन एक थोड़ा भी विचलित नहीं हुआ। तो जब वो बाद में वो नारी कहने लगी, तीन दिन वंचिला मा करी आश्वासन, 3 दिन आपने मुझे फंसाया, एक दिन फंसाया तो ठीक है, दूसरे दिन तीसरे दिन फंसाया। वो अरे रात दिन आपका नाम खत्म ही नहीं होता, ऐसा कैसा। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं मैं क्या करूं, मैं तो अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ सकता, नाम तो पूर्ण होना चाहिए। तब वो नारी कहती है कि आप पास हो गए परीक्षा में। तब वे नारी कहे तारे करी नमस्कार, नमस्कार कहके खुद का परिचय देते हैं, आमी माया करीते आईला परीक्षा तोमार, मैं माया हूँ स्वयं आपकी परीक्षा करने के लिए आया हूँ। हाँ ब्रह्मादि जीव आमी सवारे मोहिलू, ब्रह्मा जी से लेकर सबको मैंने मोहित कर दिया, हाँ एकले तोमारे आमी मोहिते नारिलू, आपको छोड़कर मैंने सबको मोहित कर दिया है। महाभागवत तुम्हें तोमार दर्शन है, तोमार कृष्ण नाम कीर्तन श्रवणे। बोलते आपका कीर्तन सुन के मेरा भी कृष्ण का नाम लेने का मन कर रहा है। चित्त शुद्ध है लचाहे कृष्ण नाम लेते, कृष्ण नाम उपदेशी कृपा करो मोते। कृष्ण नाम का उपदेश करके मुझे मेरे ऊपर कृपा करना। कभी कभी आपने देखा कि परीक्षक विद्यार्थी का पेपर चेक करता है तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, खुश होगा, ज्यादा मार्क्स दे देगा। लेकिन आपने कभी सुना है कि परीक्षक विद्यार्थी को बोलते हैं आप मेरे गुरु हो, आज से आप मुझे सिखाओ। ऐसा हमने कभी सुना नहीं, लेकिन यहाँ पे हम आध्यात्मिक जीवन में हम सुनते हैं कि माया देवी परीक्षा करने के लिए आई लेकिन विद्यार्थी इतना प्रगत निकला कि बोल रही है आप ही मेरे गुरु बन जाओ अभी। तो कह रही है चैतन्यावतारे वहे प्रेमामृत वन्या सब जीव प्रेमे भासे पृथ्वी हैल धन्या। चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव से ये पूरा जगत जो है हरिनाम संकीर्तन में डूब गया है और सब जीव उसमें डूब रहे हैं, पृथ्वी धन्य हो गई है। और फिर माया देवी एक वार्निंग देती है सबके लिए, कलयुग में जो जन्म लिए उनके सबके लिए एक वार्निंग है। क्या वार्निंग है? ए वन्या ये नाभासे से जीवचार, जो इस हरिनाम संकीर्तन में नहीं डूबेगा वो क्या है, गया गुजरा जीव है। क्यों? कोटि कल्पे कबूतार नाही का निस्तार। मैं गारंटी देती हूं कि अगले कोटि कल्पों में उसका उद्धार नहीं होगा। माया देवी की गारंटी, जो जिसने सब जीवों को पकड़ के रखा है, वो बोल रही है कि अगर हरिनाम संकीर्तन महाप्रभु का नहीं लोगे तो कोटि कल्पों में आपको उद्धार नहीं होगा। ऐसा करके थोड़ी धमका रही है, धमका इसलिए रही कि ताकि हम अच्छे से हरिनाम संकीर्तन का आश्रय लें। फिर कहते हैं माया देवी के पति कौन है, कौन है? शिव जी हैं। तो कहते हैं कि शिव जी से मैंने पहले राम नाम स्वीकार कर लिया था, लेकिन आपके आपका हरिनाम श्रवण करके मुझे कृष्ण नाम लेने का मन कर रहा है, तो आप कृपया मुझे कृष्ण नाम प्रदान कीजिए। और फिर वो ये श्लोक कहते हैं, कृष्ण नाम देह तुमी मोरे कर धन्या, आमारे भाषाए छे एई प्रेम वन्या। तो कह रहे हैं कि माया देवी प्रेम मांग रही है, उसमें आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साधु कृपा और नाम बिना प्रेम ना जन्मे। साधु के कृपा के बिना और नाम के बिना हमको प्रेम नहीं मिल सकता। तो ये आज हम प्रार्थना कर सकते हैं कि ये पूरे अगले सप्ताह में तो जरूर, लेकिन जीवन भर हम हरि नाम का आश्रय लें। और नामाचार्य हरिदास ठाकुर जिस प्रकार उन्होंने कहा कि तुलसी सेवन कर सदा हरिनाम संकीर्तन अचिरात पावे कृष्णर चरण, तो कह रहे हैं कि तुलसी का सेवन करो, हरिनाम लो, आप ये उपदेश दे रहे हैं, अचिरात आपको कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। जय नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे।